कपाट को बंद कर देता है, इसलिए तुम अब कपाट बंद करके हृदय में रखूंगा और जे रूप अंधकार में तुम सदा ऐसे ही छटपट करो।
प्रणय
रसणयादि, इसलिए यदि भक्ति चाहिए तो ऐसी भक्ति चाहिए, छटपट आओ मत। एक दो दिन की बात नहीं है, 10 दिन की बात नहीं है, एक उम्र की बात नहीं है, एक जीवन की बात। ऐसे ही भजन करते 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 प्रभु जब देखेगा तब वो इसलिए ऊपर ना। मैं तो नित्य आपके ही चरणों के बीच में अकिंचनों के वही एकमात्र व्यक्ति उनके चरण कमल पर। इसलिए आपकी माधुरी की कोई एक छटा भी हमारे हृदय में चकास माने प्रकाशित हो। नारद जी या भगवत भक्त लोग ऐसे ही सहज समाधि में आ जाते हैं, इसलिए आते हैं, इसका कारण कभी ना कभी किसी न किसी तरह से एक झलक दर्शन कर लेते हैं। धाम का ही झलक हो या भगवान का झलक हो, यदि एक बार देख लिया ना बस बीत जाते हैं। बरबस उनका जैसे गोपियां ने कहा है ना, हम तो उनको भूलना चाहती हैं और तुम हमको शिक्षा दे रहे हो जो उनका ध्यान करो, हमारा तो अपने आप ध्यान लग जाता है। और तुम कहते हो जैसे इनको छोड़ करके और उनका ध्यान लगाओ, तो हमको विषय का इसे एक बार जब जैसे कि नारद जी को थोड़ा सा हो गया झलक, बस जीवन भर नहीं भूल सकते और उनका प्रेम बढ़ता चला गया। ऐसे ही भगवान कभी कभी ऐसा लिखा गया है ना, गर्भ में माता के गर्भ में प्रभु कभी दर्शन दे दे। किनको देते हैं?
सुखवान जी
भाई, खूब सुखवान होगा सबको नहीं, दुख तो सबको होता है, किंतु सुखवान जीवों को कभी दर्शन। और जिसका दर्शन हो गया ना, वो जन्म लेने के बाद में कैसी उसकी स्थिति होगी, उसका संस्कार बन गया ना और सहज रूप में उसकी। जैसे कि चपला चपक करके और एक क्षण के बाद में अपने दर्शन को बंद कर देती है, ऐसे ही आप कभी छोटी सी एक झलक दे करके दिखाई पड़ते हैं झलक और इसके बाद में फिर लुप्त हो जाते हैं। और बतलाइए मैं कैसे अपने जीवन को बिना आपके दर्शन के कैसे रखूं? हरे तद अवलोकनम अंतरे, बिना आपके दर्शन के मैं नहीं रख सकता, बच नहीं सकता। हम लोगों के लिए अब हम लोग खाने पीना बिना मर रहे, क्योंकि दर्शन की अभी वैसी आवश्यकता नहीं है।
जैसे कि
हे अनाथ बंधो, हम जैसे अनाथ के एकमात्र आश्रय स्थान और दूसरा कोई उपाय नहीं है भक्ति को पाने के लिए, भक्ति नहीं है बात तो ठीक, किंतु मिलेगी कैसे? भगवान के बिना मरना, क्योंकि भगवान के हृदय में भक्ति है। यही भक्ति भक्तों के हृदय में भगवान से ही प्रकाशित होती है, इसलिए भक्तों के हृदय में अथवा भगवान के हृदय में भक्ति है, दूसरी कहीं जगह है नहीं। इसलिए बिना भगवान की कृपा के ये भी संभव है। यद्यपि ये कहा गया है भगवान की कृपा भक्तों के कृपा के अनुगामी, बात ठीक भी है। आप तो एकमात्र, यदि कोई निष्किंचन यदि हो जाए किसी तरह से तो वो मिल सकती है। इसलिए कह रहे हैं एकमात्र आप निष्किंचनों के प्रिय हैं। कैसे निष्किंचन? जैसे सुदामा, तो सुदामा से हमारा तो तात्पर्य नहीं, किंतु अब पांडवों के बंधु हैं तो पांडवों का आदर्श भी हमारा नहीं, तो कैसा अकिंचन होना चाहिए? रूप सनातन जैसा, महाप्रभु जैसा महाप्रभु अपने जीवन में दिखलाए ना, महाप्रभु जी के पास में क्या रहता था जब पुरी में थे, तो उन्होंने कहा उनको अपने गोविंद को, गोविंद अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, ये लोग विषय का हमारे पास में विषय को लाए, इसे आज ही चलना है, हमारा पूरा सामान ले लो,
कमंडलू और बहिर्वास उठाओ चलो।
अच्छा, महाप्रभु का पूरा सामान क्या था?
डोर कॉपी,
डोर और कॉपी बस।
दंड था नित्यानंद तोड़ दिया उसको,
और दंड था वो तो पहले नित्यानंद प्रभु जी ने फेंक, और कमंडलू महाप्रभु जी छोड़ दिया, बट डोर कॉपी बहिर्वास बस। तो उन्होंने साथ ही साथ में कितने थे अंदर, तो हम लोगों जैसे 5-7 जोड़ी तो होगी, 5-7 जोड़ी नहीं बस एक जोड़ी, एक जोड़ी सीखने के लिए एक पहन, अधिक कभी रखते ही नहीं थे, ऐसे अकिंचन महाप्रभु जी जैसा, महाप्रभु जी का आदर्श है, कोई भी चीज नहीं। तिल लगाने के लिए उनको मृगी का रोग है, लोग कहते हैं मूर्छित हो जाए, मृगी का नहीं रोग है, उनका रोग है दूसरा, कृष्ण का रोग, लोग समझते हैं कि इनके शरीर में दर्द हो जाता है, चंदन का तेल और कहाँ बंगाल से ले गए, महाप्रभु जी ने जगदानंद जी ने इनको दिया, महाप्रभु जी ने कहा इसको जगन्नाथ जी का प्रदीप जला दो, तो ये बिगड़ गए और खड़े को लेकर के तोड़ दिया और कपाट बंद करके रह गए, 2-3 दिन तक का दरवाजा नहीं खोला, पानी नहीं पिया, खाया नहीं, भोजन नहीं किया, रो गए, और महाप्रभु जी ने कहा कि मैंने तो गड़बड़ कर दिया, इसलिए उनसे डरते हैं महाप्रभु जी, दरवाजा खोला नहीं उन्होंने। उन्होंने कहा कि देखो मुझको बड़ी भूख लगी है, 3 दिन से खाया नहीं, मैं अभी समुद्र स्नान करने जा रहा हूँ और स्नान करके अभी आया 15 मिनट में, भोजन तैयार मिलना चाहिए, चले। अच्छा, इनको क्रोध तो हुआ है, खड़ा इतना कष्ट से ले आए और उन्होंने तोड़ करके फेंक दिया, क्रोध हुआ है, किंतु देखो सेवा ऐसी चीज है, इनके वैसे प्रेम कह दिया जैसे मुझको भूख लगी और मैं जा रहा हूँ स्नान करने, बस मान टान क्रोध सब छूट गया, 15 मिनट में ही आएंगे, 15 मिनट में उनको हमको भोजन कराना, बस साथ ही साथ में एकदम। और आठिया पात,
आंगठिया 32 आंगठिया कलर पात,
केले के पत्ते में बड़े बड़े, ये साधारण छोटे छोटे नहीं, बड़े केले के, तरह तरह के व्यंजन, न जाने कहाँ से इतना जल्दी बनाया,
इमली पत्ते का चार पत्ते
और सब कुछ बना करके एकदम रख दिया। महाप्रभु जी इतने में हंसते हुए आ गए, उनको संदेह था कि ये बनाएगा कि नहीं, क्योंकि इसने मान किया है, उनको देखा कि सब एकदम तैयार, मान हो तो ऐसा गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति, भगवान के प्रति, तब तक ये माने नहीं, तो वह है क्रोध और द्वेष और ईर्ष्या, जो कि एकदम पतन कर देता है, इसलिए मान का आदर्श ये प्रेम है यथार्थ। महाप्रभु आए, देखा सब कुछ तैयार, गोविंद भी साथ है, उनका जैसे एकदम आसन करके और पत्ते दे करके सब रख दिया, का जैसे अपनी नहीं कर रहे हैं, जाओ तो प्रभु से कहो जो बैठ गए, सप्तमहा भामा जी ने मान किया है बस। महाप्रभु जी समझ रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं नहीं अभी खाऊंगा, अच्छा पहले मैं नहीं खाता, तो अंत तक दोनों को दो पत्तों में दे, मैं भी खाऊंगा वो भी खाएगा, तब तो मैं खाऊंगा नहीं तो नहीं खाऊंगा, और बड़े असमंजस में पड़े। फिर उन्होंने कहा जिसे प्रभु से कह दो ये पहले खा लें तो मैं प्रसाद खाऊंगा। महाप्रभु जी ने कहा कि पाएगा कि नहीं पाएगा, यदि नहीं पाएगा तो मैं भी नहीं पाता, कहा जी तो भूखे लौट जाएगी, कहा जी मैं प्रतिज्ञा करके संकल्प करके कहता हूँ मैं जरूर पाऊंगा पहले महाप्रभु, किंतु महाप्रभु से बात बोले नहीं, वो गोविंद के माध्यम से बात करें। गोविंद जी ने कहा महाप्रभु से अच्छा तो ठीक है, किंतु तुम यहीं रहना, मैं तो विश्राम करूंगा भोजन के बाद में, अब तुम यहीं पर आकर के देखना है जो वो खाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कल से हमारा उपवास चल। महाप्रभु जी ने प्रसाद पाया, इसके बाद में उन्होंने यदि ऐसा होना तब तो भक्ति होना। तो महाप्रभु जी के पास में कुछ भी नहीं अपना था, यदि हम लोगों के पास भी ऐसा रहे, हम कहते हैं कि तो हम भी निष्किंचन होंगे, किंतु जब तक निष्किंचन ऐसा नहीं होंगे तो भगवान का प्रेम होना बड़ा भारी कठिन है। हम लोग चेष्टा करें ऐसा प्रदीप स्तंभ ऋषि को बनाए, हे हरे माने हे हमारे दुर्गुणों को हरण करने वाले, अपराधों को हरण करने वाले, हमारे अनर्थों को दूर करने वाले,
हरति चित्त नीति,
ये हुआ एक, और उसके बाद में हमारे चित्त को हरण करने वाले प्रभु, मैंने इन दुखों को कौन हरण करेगा, आपका मैं दर्शन नहीं पा रहा, छटपट कर रहे हैं। इसलिए साधक हम लोग किस लिए घर छोड़ करके आए, विचार करो किस लिए आए, माता पिता को कष्ट दे करके, धन संपत्ति छोड़ करके, कुछ न कुछ सभी छोड़ करके आए हैं, अच्छे अच्छे घर के लड़के, किस लिए आए, केवल मात्र भजन करने के लिए ना, तो अब देखिए हम भजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये कर रहे हैं, मेरे इन दुखों को आपके सिवा कौन मुझे प्रेम दे करके इस चीजों को हरण कर, ऐसे भावना बनी गई। हे करुणई के सिंधु, हाँ एक आशा टीकी है, आप करुणा के सिंधु हो, मैं अनाथ हूँ, मेरे जैसा कोई अनाथ नहीं और आपके जैसा कोई करुणा वाला नहीं, यही एक है, मैं सबसे गया बीता मौसम कौन कुटिल खल कान, और एक और भी है हमारे समान रघुनाथ दास गोस्वामी का हिस्सा है, मत समो नास्ति
पापात्मा
ना पराधिक तो कश्चन
परिहारे
तुम्हे लज्जा किम ब्रूहे पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम या बतलाइए मेरे जैसा कौन अपराधी और मेरा जैसा कौन दुर्भागा होगा और आप कहाँ। बस यही आशा है कि आप करुणा सिंधु हैं, आपके एक करुणा के, आप तो सिंधु आ, मैं एक बिंदु से लो मात्र से ही मैं, मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। यह बात ठीक है, कहां मैं एक विषय का कीड़ा और कहां यह प्रेम पारिजात है, पारिजात मैंने स्वर्ग में पारिजात पुष्प होता है, चिंता मन हुआ, कहां चिंता मन और कहां मैं विषयों का कीड़ा, तो भी आशा रखता हूं, इसी का नाम है लोग। एक दरिद्र व्यक्ति था, वो भी काना और निर्धन, किंतु वो इंग्लैंड की रानी से या राजकुमारी से शादी करना चाहता, बामन होकर के
चांद
पकड़ना चाहते हैं। हम लोगों के लिए भक्ति ऐसी ही है, तभी इसके अतिरिक्त हमारी कोई गति नहीं, हम वही चाहते हैं और अंत में वही लेकर के हम रहे हैं। इसके केवल पर विश्वास आप ही पर है, अनाथ बंधो करने सुगम कर ही सब सांवरे, सुगम कर ही सब सांवरे, पैसु दृष्टि जो हो अनकरणी करनी करहु, करनी करहु न कोई, तात्पर्य सुम कर सम सांवरे, भक्ति बड़ी दुर्लभ है, बड़ी दुर्लभ, किंतु सामरे जो है ना, ये जिस पर दृष्टि हो जाएगी सहज मात्र में, क्षण मात्र में संभव है। अनकरणीय करण प्रभु की कृपा हो जाएगी तो पंगु
लंघयते
ग्रीन
मुकम करती वाचाल,
सब कुछ संभव हो सकता है। हे प्रभु, ऐसे मन ही मन में कर रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं, हम लोग भी श्लोकों को पढ़ेंगे तो ऐसे ही भावना करके कहते हैं, प्रभु आप मेरी विनती को कब स्वीकार करें, मेरी विनती कब स्वीकार होगी, हरे कब आप हमारे दुखों का हरण करेंगे, हे हरे हमारे मन को कब आप हरण करेंगे, हे हरे और अपनी प्रिया जी के साथ में जो आपके मन को हरण करती हैं उनके साथ कब हमको दर्शन दें, कृपा करें। नैन पथगामी भवतु, आप हमारे नैनों में कब पथगामी होंगे, कब हमारे नैनों में आप दर्शन देंगे। हाँ है मैंने, मैं अपनी मन की पीड़ा किससे कहूँ, ये कह रहे हैं पिल्ल मंगल जी, कौन मेरा हित ऐसी है जो मेरी बात कान लगा करके सुनेगा, बस आप ही सुन सकते हैं, हमने सुना है कि जितने अनाथ हो गए हैं आपकी बात उनकी बातों को आपने सुना है, मेरे दिल पर जो बीत रही है उसका विश्वास भी कौन करेगा, ये पहले श्लोक में आज की हूँ या किन प्रणी में। कोई नारायण दास हैं, बड़े भक्त रसिक हैं, उनकी बहुत पहले हमने कुछ पढ़ी थी, सखी मेरे मन की हो जाने, सखी मेरे मन की हो
जाने,
हाँ वही वही है कि अब वो संस्कृति ये शायद विषय है, काशू कहूँ सुने जो चित दे हित की बात बखाने, ऐसे को है अंतर जाने तुरत पीर पहचाने, नारायण को जो बीत रही है अब कोई सच माने, कब कोई सच माने, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है जो सुने और उसका तुरंत ही उपचार कर, कोई समर्थ भी नहीं, आप ही एकमात्र समर्थ हैं, प्राणनाथ मेरी दशा पर कुछ तो दया करो, और कब तक तड़पाओगे, प्यारे दर्शन दीजो आए, जल बिन कमल चंद बिन रजनी, चांद के बिना जैसे रजनी, और जल बिन कमल ऐसे तुम देखे बिन सजनी, आकुल व्याकुल फिरू रहे निधि, विरह कलेजे खाए, दिवसन भूख नींद नहीं रहना, मुख सो कहत न आवे बैना, कहाँ तरु कुछ कहत न आवे, मिलकर सब तपन बुझाए, क्यों तरसा वो अंतर जानी, आप मिलो कृपा दर्शन, मीरा दासी जन्म जन्म की पड़ी तिहारे पानी, ये मीराबाई का पद, इसका तो बाहरी अर्थ बतलाया, आप भीतरी अर्थ बतला रहे हैं, ये पिल्ल मंगल जी कह रहे हैं पहले जो बतलाया, और अपनी दीन अवस्था का प्रभु को निवेदन करके उनकी कृपा के लिए प्रार्थना कर, और यहाँ कह रहे हैं अंतरंग लीला पर अर्थ ये है, राधा जी विरह संताप से अत्यंत विकल होकर के ये प्रार्थना कर रही, इसलिए राधा जी की ये बात पिल्ल मंगल ने उसे सुना और सुन करके अपने हृदय में रख करके उसी को उन्होंने व्यक्त, पहली बात मैं अपनी दशा का वर्णन, और यहाँ राधा जी के विरह का ये वर्णन कर रहे हैं, हे हरे तुम हमारे चित्त को चोरी करने में बड़े चतुर हो, और तुमने हमारा चित्त चोरी कर लिया है, मेरे प्राण को तो हर करके ले गए, अब मुझे मेरे दुख को भी तो हरण करो, प्राण ले गए तो बहुत अच्छी किया, तो हमारे जो दुख हैं आप दुखों को भी हरण करो, मेरा दुख क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है, मेरा दुख यही है कि तुम्हारे दर्शन के बिना अधन्य दुर्दिनों को, दुर्दिन मैंने आज नहीं मिला दर्शन, कल नहीं मिला, ये सब अधन्य दिन है, मैं कैसे व्यतीत करूं, तुम्हारे बिना एक एक पल एक एक क्षण जुग के समान प्रतीत होता है, तुटी जुगाए ते काम अपश्यता श्रीमद् भागवत, एक एक पलक तुम्हारे दर्श के बिना एक एक कल समान के बीत रहा है, सारा जगत शून्य के समान दिखाई, मैं कैसे इन कष्टमय दिनों को व्यतीत करूं, तुम कोई उपाय बतलाओ, एक संसारी व्यक्ति कुछ लूट जाने पर, मान लें कि स्टेशन से आ रहा था, सोने की जंजीर और सब अपने सूटकेस में रखा था, 1,00,000 रुपये का नोट भी रखा था, और आते बीच में उसने कोई लेकर के चला, मतलब उसके लिए कितना दुखी होगा। और उससे कोटि गुण ये सब चीज़ें मूल्यवान भगवत भक्ति, और उसे छोड़ करके हम आनंद के साथ में जीवित रहे। भक्तों को ऐसा ही होता है, यदि हम लोग भजन करेंगे, भजन करते करते इसकी उपलब्धि हो सकती है। सुंदर तुम्हारे दर्शन के बिना हृदय में आग जल रही है, वर्षा की धारा की भांति नेत्रों से अशुभ धारा प्रवाहित हो रही, फिर भी यह बात आग बुझी के नहीं हो रही, अधिक धरती जा रही है, एक एक निमेश मेरा एक एक दुख से मान बीत रहा है, सारा संसार सुना सा लगता है, बोलो अब मैं क्या करूँ। जुगाई तम निमिषे चक्षुषा प्राप्तिशा शून्य जगत सर्वम जगे लगे रहे। कोई कहता है कि जाओ घर में सुख से रहो, मुझे क्या कहा, घर में जाऊं सुख से रहूं, सुख से कैसे रह सकता हूं, या राधा जी करिए सुख से कैसे घर में जाऊं, प्रियतम हमारा घर कहाँ है, घर ही कहाँ है, और कौन हमारा है घर में, जो है सो तो सब के सब दुखदायी हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष नित्य प्रिय आप में ही अनुराग करते हैं, आप ही उनके घर हैं, आप ही उनकी संपत्ति हैं, आप ही सर्वस्व हैं। कुर्वन्ति ही त्वयि रतिं कुशलाश्म आत्मा नित्य प्रिय पतिसुदादि आतिथेय। श्रीमद्भागवत में गोपियों ने कहा भगवान से, भगवान ने कहा अरे रात हो गई, अब तुम लोग लौट जाए, अब सुख से घर में जाओ रहो, और पतियों की सेवा करो, पशुओं को देखो, गायों को दूहो, रोटी पकाओ, घर में सुख से जाओ। तो ये गोपियाँ कार्य कुर्वन्ति ही त्वयि रतिं कुशलाश्म आप, जो बुद्धिमान पुरुष हैं, जो चतुर हैं, वो तो आपके चरणों की सेवा करते हैं और आपके चरणों में रति करते हैं, अनुराग करते हैं। नित्य हे नित्य प्रिय, नित्य प्रिय, ये संसार में पति पुत्र आदि भी ये जितने भी हैं वो आरती दी, आरती देने वाले, दुख देने वाले, विशेष करके वो जो हमको सबसे अधिक प्यार करते हैं संसार में, वो सज्जनाक्ष दस्यु के समान है, वो हमारा अमूल्य भक्ति धन इधर से उधर लेकर के नष्ट कर देते हैं। हमारे पति पुत्र बंधु बांधव सबका त्याग करके अनाथ हम बनी हुई हैं। हे अनाथ बंधु, तुम ही हमारे एकमात्र अनाथ हो, बंधु और सर्वस्व धन तो तुम ही हो, तुम्हारे बिना सब अधन्य है, यह जीवन अधन्य है, यह समय अधन्य है, वह स्थान अधन्य है, सभी कुछ अधन्य है, इसलिए हम पर अनुग्रह। बंधु हे आत्मबंधु हे हरि, अनुग्रह करके हमारे दुखों को हरण करो, दर्शन दो, तुम्हारे बिना जीवन का एक एक पल भार हो रहा है, हाय अब हमारे दिन कैसे थे।
भजन रहस्य पाठ कर रहे थे कल तक, आज उसी का भी प्रसंग चलेगा, किंतु आगामी कल समस्त भारतवर्ष में गुरु पूजा मनाई जाती है, इसलिए इसका नाम गुरु पूर्णिमा बतलाया। मैं समझता हूँ इसी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही चैतन्य बाप महापुरुष जी ने कहा था शिवाज पंडित जी को, व्यास पूजा कहाँ आरम्भ हो,
व्यास पूजा हवे बामनाथ घर,
उन्होंने
व्यास पूजा
का चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि कल व्यास पूजा है इसी आषाढ़ महीने में, आज चतुर्दशी है और कल होगी पूर्णिमा, ताकि से कल ही व्यास पूजा होगी, आषाढ़ ही पूर्णिमा लग रही है, इसलिए ये पूजा कहाँ होगी। उन्होंने कहा कि ये मैं गरीब के घर में ही, ब्राह्मण के गरीब में ही, गरीब घर के ब्राह्मण में ही यहीं पर होगी। अरे तुम्हारे ऊपर तो बहुत भीड़ भार हो जाएगा, नहीं भार की कोई विशेष ये नहीं, उसमें तो कुछ भार लगने वाली चीज़ ही नहीं है, उसमें लोगों को तो खिलाना पिलाना है नहीं, जो उत्सव इत्यादि होगा हमारे पास में यज्ञ की जो गुरु पूजा की जो सामग्री है वो हमारे घर में है, एक उपवीत चाहिए नया सा, तुम लोग भी उपवीत एक रखते हैं, उपवीत चाहिए और पान चाहिए, गुआ मने सुपारी चाहिए, चावल चाहिए कच्चा, रोली चाहिए, ये सब कुछ घट चाहिए,
चंदन
हाँ फूल तुलसी चंदन
सब,
इसलिए व्यास जी की पूजा हो। व्यास पूजा किस लिए होगी, उद्देश्य क्या है, गुरु पूजा, व्यास पूजा का ही नामांतर गुरु पूजा, गुरु की पूजा, विशेष करके भारतीय संस्कृति के गुरु व्यास जी, ऐसी कोई विद्या नहीं है चारों वेदों से लेकर उसके अतिरिक्त अलंकार साहित्य सारंग जो वेद है, सारंग वेद किसको कहते हैं,
शिक्षा कल्प व्याकरण छंद ज्योतिष
निरूपण, ये सारंग वेदों के सही जितनी भी शिक्षाएं भारतवर्ष में प्रचलित अभी तक थी या प्राचीन भारतवर्ष में प्रचलित थी सबके ये आचार्य व्यास वेद अभ्यास, उन्होंने वेदों का विभाग किया, उन्होंने ही उपनिषदों को बहुत से उपनिषदों को प्रकाशित किया, उन्होंने ही पुराणों को प्रकाशित किया, पुराण भी उन्होंने लिखे ऐसा नहीं, उनके पहले भी
शतकोटि प्रविष्ट
वो सब था, जैसे वेद हैं नित्य, पुराण भी वेदों के अर्थ को पूर्ण करते हैं, इसलिए उनका नाम पुराने भी हैं और उसके पूर्ण भी अर्थ को करने वाले, उसके बिना वेद पूर्ण नहीं है, इसलिए इन सबको प्रकाशित किया, जिन लोगों का अधिकार नहीं है वेदों में ओंकार इत्यादि का उच्चारण नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए महाभारत और पुराणों की रचना हुई, जो वही सब विषय है, विषय तो वही है किंतु इसमें सबका अधिकार है ऐसा उन्होंने, वेदों में जिनके अर्थ बहुत गंभीर हैं समझना बड़ा भारी कठिन है, उसको पुराण में उपाख्याय के रूप में कहानी के रूप में सब सहज कर करके, और इसके बाद में अंत में उससे भी संतुष्ट नहीं होकर के अंत में श्रीमद्भागवत को उन्होंने प्रकाशित किया, इसलिए भारतवर्ष में ऐसा कोई भी संप्रदाय नहीं है जो उनको गुरु नहीं मानता, सभी लोग उनको, विशेष करके अभी प्राचीन भारतवर्ष में शंकराचार्य जी के बाद में वो लोगों की प्रधानता रही, भारतवर्ष के चारों तरफ में उन्होंने प्रचार किया था थोड़े देर में शंकराचार्य
अद्वैतवाद,
इसलिए धर्म कहने से लोग समझते हैं जैसे वही अद्वैत है, और धाम कहने से उनके ही स्थापित किए हुए धामों को सभी लोग मानते हैं कि वही चार धाम हैं उनके चारों शिष्यों के द्वारा, यद्यपि उन्होंने द्वारकापुरी में, पुरी में बद्रीनारायण वहाँ पर और एक श्रृंगेरी, ये चार जगहों में उन्होंने स्थापित किए, ये सब हमारे प्राचीन संस्कृति के ही ये सब धाम है, बहुत उनसे बहुत पहले व्यास इत्यादि के समय से ही है।
किंतु उन्होंने नए रूप में वहाँ पर अपना मठ स्थापन करके वहाँ से प्रचार आरम्भ किया और थोड़े दिन के बाद में ऐसा किया कि कर्मी टर्मी सभी लोगों को परास्त करके सर्वत्र ही अद्वैत वार्ता प्रचार, विशेष करके अपने को विद्वान मानने वाले जितने भी लोग हैं वो सब शंकर के ही फॉलोअर्स, शंकर के ही वेदांत को वेदांत। यदि इसमें रामानुमोद्भव विष्णु स्वामी निम्बादित और चैतन्य महाप्रभु इत्यादि नहीं आते तो एक चेटिया ही उनका एक साम्राज्य रहता, किंतु इन लोगों ने आकर के उनके मत का खंडन करके ये सब, तो वो लोग भी व्यास को मानते हैं, व्यास की पूजा करते हैं, किंतु उनके मानने में थोड़ा सा गड़बड़ है। गुरु को अनमगतस्या माने हमारे गुरु जी मूर्ख हैं, ज्ञान नहीं है उनको, क्यों नहीं है, थोड़ा सा व्याकरण में उन्होंने भूल कर दिया, इसलिए सिद्धांत में भूल गए। उन्होंने आनंदमय प्रकरण में उन्होंने आनंदमय अभ्यास आप उन्होंने एक लिख दिया, सदान पब्लिक के संबंध में ये समझ में नहीं आए, उन्होंने लिखा उनको लिखना चाहिए था ज्ञान का अभ्यास होना चाहिए, किंतु लिख दिया आनंद का अभ्यास होना चाहिए, उन्होंने आनंदमय का अभ्यास होना ये कैसे लिख दिया,
आनंद अभ्यास
आनंद अभ्यास आप ऐसा लिखना चाहिए, किंतु उन्होंने लिख दिया आनंदमय अभ्यास आनंदमय अभ्यास आनंदमय की उपासना करो, ये आनंदमय से व्यक्ति हो जाता है किंतु उनकी दृष्टि से कोई व्यक्ति नहीं है, आनंद नहीं है, कल गुण ही है, उनको व्यक्ति नहीं मानना चाहिए, शक्तिमान नहीं है केवल शक्ति ही है, इसलिए शक्ति की उपासना को जितने हैं ना सब पीठों में शक्ति की उपासना करो। ये शंकराचार्य वाले सभी शिव शक्ति कहो दुर्गा शक्ति कहो ये विंध्याचल की शक्ति को सब इसी शक्ति के उपास किसी न किसी रूप में बोलो, शक्तिमान की उपासना नहीं करते, तभी उनको ऐसा करते हुए भी इस दिन में व्यास जी के जन्म के दिन में उनकी उपासना करते हैं और उनका जन्म हम लोग के सौभाग्य से इस मथुरापुरी में ही हुआ था, हमने एक दिन बतलाया था व्यास जी यहीं पर व्यास जी का जन्म यहीं पर हुआ था, सरस्वती नदी एक आती थी
वो
वृंदावन से इधर आते हैं तो वहीं द्वारकर उधर से सरस्वती नदी आकर के उसमें मिलती थी, उसी को कृष्ण गंगा घाट कहते हैं, अभी भी कृष्ण गंगा घाट वहाँ पर है, वहीं पर चक्रेश्वर महादेव जी की पूजा भी होती है, पास ही में अम्बरीश महाराज जी का टीला है, तो वहीं पर उनका जन्म हुआ। तो वो कैसे जन्म हुआ फिर से चढ़ा सुने तो कोई हर्ज नहीं, वो पराशर जी ने महर्षि पराशर वो किसी काम से मथुरा की तरफ में आए रहते थे वृंदावन में उधर जमुना के उस पार, किंतु वो आगे घर में किसी काम से, शाम हो गई वर्षा होने वाली थी आकाश में मेघ छा गए, इतने में देखा जब मैं कैसे जाऊंगा, शाम हो गई तो नाविक भी नाव चलाना बंद करके अब शाम हो गई है इसलिए लौट रहा था, लौट करके घर आ गया था, चारपाई पर लेटा था, तो इसमें पराशर ऋषि आए, उनको सभी जानते हैं बड़े बड़े महात्मा हैं प्रभावशाली, तो उन्होंने उससे कहा कि भाई हमको ज़्यादा पार कर दो, मैं बहुत विलंब से आ गया और नहीं करने से हमारा बहुत हानि हो, उन्होंने कहा कि अब तो मैं सब डंडा फंडा सब लेकर के इधर आ गया, उन्होंने कहा जैसे तैसे हमको पार, उन्होंने कहा कि बेटी मैं बहुत क्लांत हो गया तुम इसको पार करो, उनकी एक लड़की थी अस वो थी तो अस्परा की लड़की थी कौन मिलता या किसने उसका वो गिर गया था वो फिर उसी को मछली ने खा लिया और मछली के खाने से मछली से वो पैदा हुई, इसलिए मछली जैसा वो था किंतु अपूर्व सुंदरी थी अस्पराम मैया जैसी, उसी को उन्होंने पाया धीवर में और उन्हीं ने उसको पाला पोसा। उसका नाम मत्स्यगंधा अथवा सत्यवती, तो वही उसी को कहा। उस समय में 12-13 वर्ष की लड़की थी, उन्होंने कहा इसको पार कर, तो वो भी पार करने के लिए उसको चली। जब नदी नाव में बैठ करके जब पार करने लगी तो एक दीप सा आया, टापू आया और उसी जगह में ऋषि उतरे और लड़की की तरफ में इस तरह से देखा कि साथ ही साथ में उसको गर्भ रहा और साथ ही साथ में 16 वर्ष जैसा बहुत लंबा चौड़ा देश पुरुष श्यामलाल का, इसलिए उनका नाम हुआ कृष्ण। कैसे? द्वैपायन,
दीप जिसका आयन है,
आयन मैंने आश्रय मैंने जहाँ पर उनका जन्म हुआ, आयन द्वैपायन। और व्यास वेदों का भी भाग किया और भगवान के नाम रूप गुण लीला का विश्व में प्रचार करके वो धर्म के दाते स्वामी। उन्होंने मैया से पराशर जी ने कहा कि तुमको डरने की और लज्जित होने की कोई बात नहीं, तुम कुंवारी की कुंवारी ही रहे और ये लड़का भगवत अवतार है, ये भगवान की इच्छा से यह सब, तुम घर में जाओ, कोई चिंता मत करो, तुम्हारा विवाह संतन महाराज के साथ में होगा जो इस समय भारतवर्ष के बड़े भारी सम्राट हैं और तुम्हारे बड़े बड़े वीर लोग सब पैदा होंगे तुम्हारे घर, तुम्हारा भीष्म गंगा पुत्र भीष्म के साथ में वो तुमको भी अपनी मैया के रूप में मानेगा। पीछे से वो तो लौट करके चली आई और व्यास वहाँ से फिर वृंदावन में 16 वर्ष के जैसे तो थे ही व्यास जी ने बताया उनको, मैया जब तुमको जरूरत हो मुझे स्मरण करना, मैं साथ ही साथ में आ जाऊंगा। तो जब कभी जरूरत पड़ती थी तो मैया उनको बतलाती थी और उनको जा करके उनको सलाह दे करके उसकी जैसे वो चाहती थी उसकी बीच उसमें सेवा करके उसकी इच्छा को पूरी करके चले जाते, इसीलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास यहीं पर प्रकट हुआ। यहाँ पर वृंदावन में रहे, जब तक कोई वृंदावन में नहीं रहेगा श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ कदापि नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर बहुत दिनों तक आराधना करके कृष्ण की लीलामयी धाम में वृंदावन नंदगांव बरसाना गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड 784 करोड़ के वृंदावन भूमि में वो रहे। विशेष वृंदावन यहाँ का जो मिनी वृंदावन है बद्रीनाथ काम वन के पास में केदार बद्री इत्यादि हैं, तो वहाँ पर उन्होंने रह करके निर्जन में अभी भी निर्जन स्थली है वहाँ पर रह करके उन्होंने आराधना की। अब इसके बाद में ब्रज के भावों को और भागवत को यहीं पर उपलब्ध किया और फिर यहीं पर रचना की उसकी और शास्त्रों का प्रणयन तो हुआ या प्रकाश हुआ बद्री नारायण क्षेत्र में वहाँ वाला हिमालय वाला और यहाँ पर इस बद्री नारायण में श्रीमद् भागवत का प्रकाश हुआ और वो भी वृंदावन में हर तरफ घूम घाम करके देख सुनकर श्रीमद् भागवत ही उनका सर्व श्रेष्ठ ग्रंथ। निगम कल्प तरु गणितंग फल और जो ग्रंथ है उनके निगम इत्यादि का जो प्रकाश किया वो पेड़ के समान है और उसमें सुंदर फल लगने वाला मीठा फल लगने वाला रसाल फल है, इसलिए सब शास्त्रों को करने के बाद भी उनको तृप्ति नहीं हुई। इतने बड़े साहित्य को लिखना कम बात नहीं है, उसको हम एक एक ग्रंथ को पढ़ना जैसे पद्म पुराण और स्कंद पुराण है कितने हजार हजार, भागवत में तो 18,000 श्लोक मात्र और वो लाखों श्लोक हैं, 1,00,000 से अधिक है स्कंद पुराण में, 1,00,000 कितना 50,000 या कितना है पद्म पुराण में, ऐसा ऐसा विशाल विशाल ग्रंथ और ऐसा ग्रंथ
जो हम लोगों की बुद्धि तो बहुत सीमित है, हम लोगों ने हजार बार सुना है कि अकृष्ण अद्वैत ज्ञान परतत्व है, किंतु इसको कहने दीजिए, इसकी परिभाषा से बतलाओ तो हमको, जैसे अद्वैत ज्ञान पर ब्रह्म माने क्या होता है, तो वही इने गिने लोग बतला सकते, जो रोज मैं बतलाता हूं तभी इन्हें गिने लोग इसको इसका अर्थ समझेंगे। अद्वैत ज्ञान पर वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इस बड़े बड़े दार्शनिक और बड़े बड़े विद्वान लोग अपनी टीकाओं में इसका विस्तृत विवेचन किया। ब्रह्मवादियों ने इसी श्लोक के द्वारा ब्रह्मवाद की स्थापना की, निर्विशेष इत्यादि, इसी के द्वारा हमारे सगुण ब्रह्मवादियों ने, जैसे कि मध्वाचार्य हैं, विष्णु स्वामी हैं, रामानुज हैं, हमारे जीव गोस्वामी जी हैं, इसी के श्लोक पर कृष्ण रसमय तत्व हैं और ब्रह्म और परमात्मा इनके अंश हैं, ये सब उसमें स्थापित किया है ये श्लोक। किंतु ये श्लोक सहज नहीं है, बड़ा भारी कठिन है भी, तो इसका अर्थ हम रोज रोज सुनने पर भी हम लोग नहीं समझ पाते। हम लोगों की तो बात क्या, गणेश अपने को विद्या का अधिष्ठात्र देवता समझते हैं और कहते हैं कि मेरा मस्तिष्क इतना बड़ा है और विश्व के जितने विद्वान लोग हैं उनकी पूजा करते हैं, उनके समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा जी भाई, व्यास जी ने कहा जी हमारा लेखक बनोगे, उन्होंने कहा जी मैं नहीं होगा, तो उन्होंने कहा जी जब लेखक नहीं होगा तो मैं कैसे लिखूंगा। व्यास जी ने ब्रह्मा जी से कहा जी अच्छा मैं लेखक की व्यवस्था करता हूँ। गणेश जी को बुलाया, कहा जी भाई तुम लिखा राइटर बन जाओ, लेखक बन जाओ। पर जैसे इतने बड़े अपमान की बात है, जैसे वकील का होता है ना मुहर, वकील कहेगा और वो
लिखेगा,
या जज साहब बैठे हैं और उनके पेशकार को कहें जैसे भाई तुम शॉर्ट हैंड से इसको लिख लो और फिर टाइप करके हमारे पास ले आना, मैं कर सकता हूँ, तो ये लिखिया कहलाता है। तो मैं व्यासदेव का लिखिया बनूंगा, वो व्यासदेव की महिमा नहीं जानते थे। उन्होंने कहा जैसे जैसे मेरे कहने से तुम बोले अच्छा, तो किंतु एक शर्त है, यदि ये बीच में कहीं रुक गए और हमको मसाला लिखने का नहीं उन्होंने दिया, उनका बोली बंद हो जाएगी और कुछ सोचेंगे तब मैं नहीं लिखूंगा,
कलम रुक जाएगी तो रुकी
है, कलम रुक जाएगी तो बस वहीं रुक जाएगी और नहीं चलेगी, इसलिए इनको सब समय बोलना पड़ेगा। तो व्यास जी ने कहा जी तुम्हारी शर्त मंजूर है, किंतु मेरी भी एक शर्त है, तुम बिना सोचे समझे हमारी बात को कलम से लिखेगा तो तुम्हारा सिर उड़ जाएगा। तो बड़ी गर्व, अच्छा ठीक है। इसलिए बीच बीच में व्यास देव ऐसे श्लोकों का उच्चारण करते थे जिसे उनको समझ में ही आना बहुत मुश्किल है, इतने में वो कितना हजार श्लोक बना करके रख देते। इस तरह से उनकी ये सब चीजों की लिखा हुआ, जब गणेश के लिए ये समझना कठिन है एक एक श्लोक, तो हम लोगों के लिए क्या कहें, किसी को व्यासकूट कहते हैं,
ये श्लोक भी व्यासकूट है,
तो इसलिए कहते हैं बड़ा कठिन है उनका। और विष्णु भी श्रीमद भागवत रस युक्त तो है, किंतु सबसे कठिन यदि कोई ग्रंथ है, सबसे उन्नत अधिकार का कोई चीज है तो श्रीमद भागवत, इससे बढ़कर के उच्च दार्शनिक और सबसे श्रेष्ठ रसपूर्ण सरल सहज और अबुर्वेद्य दुर्बोध्य ग्रंथ यदि है तो दोनों है, ऐसे ग्रंथ को उन्होंने लगे। इसलिए ये वैष्णव समाज के भी, इसलिए नित्यानंद प्रभु जी को कहा जैसे व्यास पूजा की व्यवस्था करो, यदि व्यास पूजा नहीं होगी, भारतवर्ष के दार्शनिक विचारों के और धर्म के विचारों के रीढ़ हैं व्यास, को भारतीय सभ्यता में से निकाल दो, संस्कृति में से, तो क्या रह जाएगा, जीव सुनो, इसलिए व्यास की पूजा की। जब तक व्यास की पूजा रहेगी भारत धर्म भूमि बना रहेगा, और जिस दिन भारतवर्ष से व्यास की पूजा हट जाएगी उस दिन भारतवर्ष
और धार्मिक शून्य बन जाए पश्चात देशों की धरती। किंतु ऐसा होना असंभव है क्योंकि अनपेड हम लोग हैं, हम लोग यहाँ के जो साधु संन्यासी हैं अनपेड हैं। इसे नित्य काल तक परंपरा की धारा से, गुरु परंपरा की धारा से
जुड़े रहे,
वो जरूर चलता रहे। विश्व में ऐसी कोई भी परंपरा नहीं है जो भारत पर जैसी, जैसी हम लोगों की ये परंपरा। हम बैठे हैं यहाँ, हमारी परंपरा कहाँ
है? ऋषि गोत्र,
एकदम कृष्ण तक अच्युत गोत्र से आरंभ करके ब्रह्मा उसमें आ गए, नारद जी आ गए, व्यास आ गए, क्रमशः एकदम नीचे आए। इसलिए संप्रदाय विहीन आदि मंत्रा
विफला,
इस संप्रदाय की धारा में नहीं आकर के जो मंत्र लेकर के नहीं भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, उसका धर्म बेकार का है, उसे कुछ भी लाभ नहीं होने को। और यदि भूल भटक करके भी किसी प्रकार से इस धारा में आ गया और उसी मंत्र लेकर के करेगा तो उसका मंत्र फल है। सीधी सी बात, भजन का मेरुदंड है गुरु पूजा, गुरु में विश्वास, गुरु के को प्रसन्न करना। जिस गुरु भक्ति को हमारे इस धर्म से निकाल दिया जाए तो मेरुदंड विहीन। इसीलिए भारतवर्ष में आजकल जितने भी नए नए संप्रदाय हो रहे हैं, मेरुदंड विहीन, गुरु गुरु से कोई संबंध नहीं। गुरु कहते हैं, गुरु कौन? परमात्मा का नाम ही
गुरु,
गुरु है कहते हैं ना,
अखंड तत्व गुरु।
और एक कहते हैं कोई अखंड तत्व गुरु, और कोई कहते हैं कि जितने आदमी हैं सभी गुरु हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सभी ब्रह्म हैं।